फिर उनको जो इजाफी हुक्म दिया गया, ये दो अहकामात तो वही हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, मर्दों के लिए भी, इजाफी औरतों के लिए हुक्म दिया गया। क्यों इजाफी क्यों? यहीं पे तो आके हमारी मुश्किल हो जाती है, और हमें लगता है हाय हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो गया। आदमियों को क्यों नहीं ये कहा जाता? ज्यादा औरतों को यही परेशानी रहती कि आदमियों को भी आदमियों को पर्दा कराएं या नहीं कराएं। हाँ, आप कौन सा आदमियों की तरफ ऐसे देखती हैं? कौन सा को आज आज तक आपने कभी ऐसी न्यूज सुनी है कि किसी औरत ने किसी आदमी को रेप कर लिया? हाँ, सुनी है कभी किसी ने? नहीं सुनी। लेकिन आप कितनी न्यूज सुनती हैं, हर रोज न्यूज होती है कि दुनिया में कहीं ना कहीं किसी आदमी ने किसी औरत से ज्यादती कर दी, किसी बच्ची से ज्यादती कर दी। क्यों? इससे कि जो वो आदमी के अंदर अट्रैक्शन है ना औरत के लिए, वो बहुत ज्यादा है, वो काफी एक एज में जाके भी नहीं खत्म होती। औरतों का ऐसा नहीं है, जो बिल्कुल नौजवान लड़कियां उनमें ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है ये जज्बा बल्कि और कम होता जाता है। जबकि मर्दों का तो ये हाल है, अल्लाह ताला तो क्यामत के दिन नजरे रहमत भी नहीं करेगा उसके ऊपर, तो जो बूढ़ा जानी है। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जाके कोई जिना कर सकता है आदमी। तो औरत की प्रोटेक्शन के लिए उसको एक्स्ट्रा अहकाम दिए गए ताकि ये दरवाजा बंद हो जाए। ये अब आप सोचे, जो आपका नजर का था ना पहला था, उसके बाद अगली ये बात दी गई, ये एक और दरवाजा है या एक और रुकावट है, बैरियर है इस रास्ते के अंदर। वला युबदीना ज़ीनतहुन्न, कि अपनी जीनत को जाहिर ना कर। एक तो औरत वैसे ही अट्रैक्टिव है मर्द के लिए क्योंकि वो औरत है, ऊपर से वो अपने आप को ब्यूटिफाई कर ले तो सोने पे सुहागा हो गया। कि मतलब बाबा वो पहले ही उसके अंदर अट्रैक्शन थी, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी है कि वो आदमी के लिए अट्रैक्टिव होती है। अब उस ऑन टॉप ऑफ इट वो उसको ऐसा जाहिर करे, ऐसा उसको प्रोमिनेंट करे, या उसके ऊपर और जीनत की चीजें लगा दे और आराइश उसके ऊपर कर दे, सजे संवरे, उससे वो अपने आप को और ज्यादा ब्यूटीफुल करके सामने लाएगी, तो वो तो क्या बात हो जाएगी? सोचे जरा। आप देखिए ना, एक भूखे के लिए खाना वैसे ही बड़ा अट्रैक्टिव है, या उसके लिए खाने में बड़ी उसको इश्तेहा है उसकी, उसको तलब है उसकी। लेकिन आप एक खाना बनाएं और उसको बड़ा सजा रही हैं और उसको बड़ी खूबसूरत प्लेट में, और उसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो भी बड़ी खूबसूरत है, और उसको ऐसा माउथ वाटरिंग करके आप जब सामने लगती तो बिल्कुल बहुत ज्यादा उसके लिए यानी उसको अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का सबब बन जाता है। इस तरह ही समझे औरत का, कि आदमी के अंदर तलब ऑलरेडी है, उसके अंदर वो भूख है। औरत जब ब्यूटिफाई करके आएगी तो उसको अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ कमारे लड़कों की बात नहीं हो रही, जितने भी मर्द हैं सबके लिए औरत एक अट्रैक्शन है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। अगर ऐसा होता कि शादीशुदा मर्द बिल्कुल इस चीज से पाक हो गए होते ना, तो कोई भी शादीशुदा मर्द कोई जिना ना करता। तो अब कहा गया, औरतों तुम्हारा अब ये काम है कि तुम अपनी जीनत को जाहिर ना करो, यानी उसको छुपा लो अपनी जीनत को। मर्द को नहीं कहा गया अपनी जीनत को छुपा, उसकी बेचारे की जीनत है क्या? एक पैंट शर्ट, और वो तो बेचारा तैयार भी होता है ना, तो वो और कपड़े पहन लेता है अपने ऊपर। आप देखें, जब मर्द तैयार होते हैं तो कोट पहन लेंगे, बनियान है ऊपर, शर्ट है ऊपर, कोट है ऊपर, टाई लगी होगी, और पैंट भी ये एंकल से नीचे तक जा रही है। और औरत जब तैयार होती है तो वो क्या करती है? उसके कपड़े बढ़ते नहीं है, घट जाते हैं। अगर सर पे दुपट्टा पहले लेती भी थी तो वो भी गिर जाएगा, अगर बाजू पूरे पहनती थी तो वो आधे हो जाएंगे, अगर शलवार नीचे तक थी तो वो भी ऊंची हो जाएगी, अगर अबाया लेती थी तो वो भी उतार देगी। ये औरत की तैयारी है, उलट है क्या? तो आदमी के तो वैसे ही बेचारे की कोई जीनत ऐसी नहीं है। औरत है जिसकी जीनत को कहा गया, इसको औरतों ने ही कवर करना, मर्द तो नहीं आगे कवर करेंगे ना, औरत तुम खुद ही कवर करोगी ना, ताकि तुम महफूज रहो, ताकि कोई बंदा उसके दिल में ऐसे गंदे जज्बात ना आए, उसको प्रॉब्लम उसके लिए मत क्रिएट करो। जब औरत अपने आप को एक्सपोज करती है ना, अपनी जीनत को जाहिर करती है, तो वो माशरे में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो मर्दों के अंदर वो जज्बात को हाइप अप कर रही है। अब वो या तो कहीं जाएगा किसी गलत जगह पे, अपनी बीवी के पास तो हर कोई नहीं जाएगा, उसी गलत जगह पे जाएगा, कोई और चीजें देखेगा, कुछ और करेगा, और तरीके सोचेगा। उसको इश्तिहार दिलाने वाला, उसके जज्बात को हाइप अप करने वाली कौन है? ये औरत है। चाहे वो इसके पास ना आए दोबारा, लेकिन कुछ और जगह पे गलत काम करेगा। इसलिए इस डोर को क्लोज किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन शुड अंडरस्टैंड एंड मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि वो क्या चीज क्रिएट कर रही है, कितने प्रॉब्लम, कितने फितनों का बाइस बन रही है आज। लेकिन उनको इसकी परवाह ही नहीं, बस वो अपने बनने संवरने का बस शौक है। मत फिर ये शिकायत किया करें कि देखिए मर्द ऐसे हो रहे हैं, और किसी के हस्बैंड आके उसको कुछ कह रहे हैं, और कह रहे हैं तुम्हारा रंग ऐसा है, फलानी का रंग देखो कितना खूबसूरत है, और तुम्हारा फिगर कितना खराब है, और तुम कितनी मोटी हुई चली जा रही हो, और फलां को देखो वो कितनी खूबसूरत है, ये कोई मॉडल है या वो है। क्योंकि जब जब ऐसी चीजें सामने होंगी, जब ऐसी चीजें माशरे में आम होंगी, तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी, और कमारों को तो वैसे ही आपने बिल्कुल ही किसी जगह का ना रहने दिया। वो बेचारा किधर जाएगा, वो अपनी किधर जरूरत पूरी करे, वो तो कोई हराम रास्ता ही करेगा। और जो शादीशुदा है उसको अपनी बीवी तो बुरी लगने लगेगी, क्योंकि शैतान क्या करता है, हराम को अट्रैक्टिव करके दिखाता है। उसकी नजर एक दफा उठी और वहां पे उसने देखा कि एक बेपर्द औरत है, तो अब ये नजर बार बार उठेगी, वो अच्छी लग रही है, और अपनी बीवी क्या है, ये तो ये इसमें तो ये खामी है, इसमें तो ये खामी है। ये शैतान के तीर है, और ये नजर उठाना, वो अगर कंट्रोल करना भी चाहता है तो ये उसको उठाने के ऊपर मजबूर करती है, और अपने आप को इसमें बहुत बड़ी चीज समझती है कि देखो मुझे तो इतने लोग देख रहे हैं। वो उन नजरों को अप्रिशिएट करती है और इस पे फखर करती है, हालांकि वो ये देख नहीं रही कि वो क्या कर रही है। वो एक माहौल को और एक माशरे को नापाक कर रही है। उसके बाद जिना होते हैं, रेप्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए कोई औरतें अपने आप को मासूम ना समझें जो कि ये सब करती हैं और उसके बाद सोचे मैंने मैंने क्या किया। अब आप भी उसका हिस्सा हैं अगर आप अपनी जीनत को जाहिर करती हैं। आप अभी नहीं, लेकिन आप कभी ये सर्च करके देखिएगा कि औरत के क्या चीज है जो मर्द को अट्रैक्ट करती है। बिलीव में इतनी सारी चीजें थी कि जो आप आगे भी आ रही, औरत के ये चेस्ट, उसका सीना, उसके हिप्स, उसकी टांगे, उसके होंठ, उसकी आंखें, उसकी गर्दन, सब चीजें लिखी हुई हैं। सबसे टॉप के ऊपर औरत का सीना, या फिर बाज जगह पे टॉप पे रिसर्च से साबित किया उन्होंने, मर्दों से उन्होंने इंटरव्यूज लिए, सर्वे किए हैं, ये क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है। बाज ने सीना कहा, और बाज जगह पे है कि उसके हिप्स, उसकी बॉटम। और हम इन्हीं चीजों के ऊपर फखर करते फिर रहे हैं, और हमें कोई परवाह नहीं है कि हम गंदगी कितनी फैला रहे हैं। हम उसमें अपना शेयर भी डाल रहे हैं। अगर सारी की सारी हम नहीं भी फैला रहे, वो फलां भी तो करती है, आजकल तो फलां भी कर रहे हैं, फलां फलां करते ही होंगे, लेकिन मेरा भी हिस्सा है, मैं भी मुजरिम हूं। इस चीज की सोच नहीं आती हमें। तो वला युबदीना जीनतहुन्ना। अब जीनत है क्या? अब जिसको हमने जाहिर नहीं करना। अगर आप आज अपना सोचती है ना कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है और मैंने अपने माशरे को पाक करना है, अगर आप गंदगी फैला रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आपके शौहर और आपके बेटों की नजरें महफूज रहेंगी, उनकी भी नजरें कहीं और फिर भी रहेंगी, उनकी भी नजरें आवारा होंगी, उनको फिर आपके सारे माशरे में एक एक कतरा कतरा करके ही बारिश बनती है ना। तो कतरा कतरा करके हर एक औरत अपना कतरा डाले कि अपने अपने आप को बेपर्द करती है, तो फिर माशरा और माहौल खराब होता है। जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुरान पढ़ रहे हैं उनको तो समझ आ जाए, वो तो कुछ सीखे, या हम सब मासूम बन के बैठ जाते? नहीं, हमारा तो कोई कसूर है ही नहीं, हमारा भी है कसूर। पता नहीं किस किस के घर खराब हो रहे हैं हमारी वजह से। और आप देखें, हम खवातीन होते हुए, हालांकि हमारी तो वो उस तरह से नहीं होती, लेकिन बास कितनी खूबसूरत होती है कि इंसान खुद भी देखता रह जाता है कि कितनी खूबसूरत है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है जब सज धज के। तो हम भी देखते हैं, गो के उस नजर से नहीं देख रहे होते हम, लेकिन हमें भी वो अच्छी लगती है, तो क्या मर्दों को ना लगती होगी? अगर आपको कोई औरत कह रही है बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तो इसके ऊपर फौरन अलार्म हो जाए कि फिर मैं मर्दों के सामने क्या होगा, अगर ये औरत होके कह रही है तो उसके ऊपर फखर ना करें। तो वला युबदीना जीनत हुन्ना, अब जीनत क्या है जिसको के छुपाने का हुक्म दिया जा रहा है कि इसको जाहिर ना होने दो? कुरान में जीनत किस किस माने में यूज हुआ है पहले तो ये देख लें, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट डज जीनत मीन इन कुरान, कुरान हमें क्या बताता है। जीनत कुरान के अंदर सूरह आराफ में, खुजू जीनत को मिंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में अपनी जीनत इख्तियार करो, तो कपड़ों के मानों के अंदर आया है। जहां पे कारून का बात आती है वहां पे भी उसकी सजदत की बात आई, उसको भी जीनत कहा गया। तो जो उसकी सजदत, जो उसके कपड़े, जो उसके जो उसने अपने जेवरात उस वक्त पहनते थे, वो लोग जो बड़े अमीर होते थे वो सारे, इस तरह सामरी ने जो बछड़ा बनाया था तो उसके जो जेवर बनी इसराइल के लिए थे उसको भी जीनत कहा गया। इससे पता चलता है कि ये दो चार चीजें तो हमें कुरान से ही पता चल जाती हैं कि कपड़ा जीनत है, जेवर जीनत है। तो क्या मतलब है? अब आप ये लिख लें जीनत, उसके नीचे लिखें कपड़ा, कपड़े इंसान के लिबास, वो हमें कहां से पता चला? सूरह आराफ से। इसका मतलब है कि औरतें अपना लिबास जाहिर ना करें, क्यों? इसलिए क्योंकि लिबास जीनत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जीनत नहीं जाहिर करनी। अब बास लोग औरतें कहती ना हम तो लूज कपड़े पहनते हैं, लूज वाली, लूज और टाइट की बात नहीं हो रही, कपड़ा जीनत है ना, कपड़े भी पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है कि उसमें कोई कढ़ाइयां हुई हुई हैं, कभी कोई कलर्स हैं, कभी कोई स्टाइल्स हैं उनके, ऐसे वो जीनत है। उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमें यहां पे तो नहीं बताई गई, सूरह आजाब इससे पहले उतरी थी, सूरह नूर से पहले, वहां पे हमें बताया गया कि आपने आउटर गारमेंट लेना है अपने, जो भी आपने नीचे पहनी हुई है, आपने कोई जीन पहनी हुई है, कोई आपने कमीज शलवार पहनी हुई है, आपने कुछ भी पहनी हुई है, जो भी आपके कपड़े हैं उसके ऊपर एक आउटर गारमेंट होना चाहिए ताकि आपकी जीनत छुपी रहे, ठीक है? तो लूज कपड़े इज नॉट इनफ, इनके ऊपर एक बड़ी चादर हो या बुरका हो या अबाया हो या आउटर गारमेंट हो या कोट हो, आप कुछ भी कह लें उसको, मगर ऊपर कुछ होना चाहिए जो इतना लूज हो कि आपके कपड़े भी जाहिर ना हो और आपकी जिसामत भी जाहिर ना हो। अच्छा, दूसरा जेवर, ये भी जीनत है। अब बाज लोग तो कहते हैं हम हिजाब कर रहे हैं, लेकिन वो हिजाब में से कान निकाल के और उसमें बड़े बड़े बुंदे पहन लेते हैं कि जेवर तो हमारा नजर आए, और इसको तो छुपाना है, इसको तो छुपाना है, उसको ही जाहिर करने के लिए आ गए, सिवाय ये हाथ की अंगूठी के जो आप आम पहनते हैं, वो भी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी पहन लें और ऐसी पहन लें कि वो बहुत सारे हो, इसके सिवाय नहीं, आपको उस आगे उसकी बात आ रही है, बाकी सारी जैसे आप गले का आपने कोई पहना हुआ है या आपने कानों में कोई बड़े बड़े पहने हुए हैं, ये सारे जेवर जीनत है। इस तरह जीनत का मतलब है टू ब्यूटिफाई योर सेल्फ। आप बताएं आप किस चीज से अपने आप को ब्यूटिफाई करती हैं? जब बाहर जाने लगती हैं तो कौन सी जीनत आप लगाती हैं कि आप अच्छी लगे? कहते हैं आए ऐसे ही तो नहीं मुंह उठा के चल पड़ना, कुछ मेकअप तो कर लें, तो ब्यूटिफाई करते हैं ना अपने आप को और उसको एक्सपोज भी करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है उसको नहीं जाहिर करना, अपनी ब्यूटिफिकेशन को जाहिर नहीं करना, आप उसको जाहिर करते हैं, ये हुक्म तोड़ना नहीं है क्या? हम क्या इस हुक्म पे अमल कर रहे हैं? इसके अलावा भी जीनत की चीजें हैं, आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया औरत का सीना है, उसके हिप्स हैं, उसके चेहरे के फीचर्स हैं, ये सारे, लेकिन हमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई, कुछ एक्सेप्शन, जब आपने जो आगे सीने की भी बात आ रही है, आगे आपने जो सूरह अहज़ाब इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो इससे पहले उतर चुकी थी, हिप आपके कवर हो जाते हैं सब, जब आप ऊपर जिलबाब ले लेते हैं, चादर या बाया या वो, ठीक है, लेकिन ये कहा गया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, एक्सेप्शन क्या है? जीनत जाहिर नहीं करनी, लेकिन कुछ जीनतें तो जाहिर हो जाती हैं, तो उनके ऊपर गुनाह नहीं है। कौन सी हैं वो जीनतें जो जाहिर खुद हो जाती हैं? जिनके ऊपर गुनाह नहीं मिलेगा। तो वो ऐसी चीजें हैं जिन पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। मसलन है इंसान कितनी ये कोई टॉल है ये औरत, ये भी उसकी एक जीनत है ना, खूबसूरती है, वो उसको छुपा तो नहीं सकती। अब क्या करेगी, इल्ला मादार में ना वो खुद ही जाहिर हो जाती है इसकी। या वो कितनी दुबली है या मोटी है ये भी जाहिर हो जाता है। अब ये भी तो इसकी एक जीनत है। इसी तरह इंसान के ये पर पता चल जाता है कि ये जवान है कि जरा उधेड़ उम्र है, क्योंकि जो जिस स्टाइल से वो चल रही होती है ना, चलने से ही पता चल जाता है कि ये लड़की जा रही है या औरत जा रही है। और थोड़ा बहुत उसका जो है ना बॉडी का वो भी पता चल जाता है, स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। तो इनको वो छुपा नहीं सकती, उसके हाथ में ही नहीं। तो ये वाली माफ है, इनको एक्सेप्शंस लिखिए, एक्सेप्शंस, इल्ला मदहरा एक्सेप्शन है। इस तरह आपने जो जिलबाब लिया हुआ है, जो चादर ऊपर ली या अबाया लिया, उसके ऊपर कोई कोई किसी कलर का है, ब्लैक नहीं है, कोई कलर है, कोई छोटा मोटा उसके ऊपर कोई प्रिंट बना हुआ है, छोटी मोटी कोई उसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है। ये नहीं कि आप अभी जिलबाब ही ऐसा ले लेंगे वो एक सेल्फ दुल्हन है। बस लोग बेचारे समझेंगे जिलबाब का मतलब है मैक्सी, मैक्सी पहन के घर से निकल रहे हैं, ठीक है, उससे मैक्सी से आपकी टांगे की साफ नहीं नजर आएगी, आपके एप कवर हो जाएंगे, लेकिन वो तो जिलबाब का मकसद ऊपर का कपड़ा होता है। ये नहीं कि आप मैक्सी पहन ले तो जिलबाब हो गया आपका, आप पर्दे में आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। ये कपड़ों के ऊपर एक लूज चीज पहननी है, टाइट टाइट मैक्सियां पहन के चल रहे थे तो कहते हैं जिलबाब हो गया। तो अब इस जिलबाब को तो आप नहीं छुपा सकते, ये तो नजर आएगा ना, आपने कलर्ड स्कार्फ लिया हुआ है, जिलबाब लिया हुआ, वो जो नजर आ रहा है। इसी तरह हाथ है, हाथ भी नजर आएंगे ना, आप कहीं कोई पैसे दे रही हैं या कुछ, आप हाथ में कोई रिंग पहनी हुई या कोई मेहंदी लगी हुई थी आपके हाथों में, तो ये नजर आ रहा है। तो ये भी इल्ला माजहरा मिनहा, इसके ऊपर नहीं गुनाह होगा। इस तरह कोई औरत कैसे चल रही, हाँ अनलेस के वो ऐसी कोई कैटवॉक ही चलना शुरू हो जाए या टुमक टुमक ही चल रही, वो तो मना है, वो तो आगे आएगा इसमें, लेकिन अदरवाइज आप अपनी चाल का भी नहीं वो कर सकते। कभी कभी चाल से भी पता चल जाता है, इंसान छुप नहीं सकता, कितना अपने आप को छुपा लेगा तो बिल्कुल ही फिर वो उसमें किसी डोली में ही बैठ के निकले तो फिर नहीं नजर आएगी, वरना ये चीजें तो नजर आएंगी। अब सहाबिया तो काम काज भी करती थी, बाहर जाके जंगों में भी चली जाया करती थी, बाजार भी जाती थी, मस्जिद भी जाती थी, खेतों में भी काम करती थी, तो फिर वो क्या करती, लेकिन इन चीजों के साथ वो करती थी। हर चीज तो नहीं ना आप छुपा सकते, तो ये तो जाहिर होंगी, औरत तो सारी की सारी मर्द के लिए एक जीनत की चीज है। मगर कहा गया वो वाली जो जीनत आप खुद इख्तियार करते हैं ना, खुद वाली जो आप खुद अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपने ऊपर अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे जेवर है, चाहे मेकअप है, चाहे जो भी ऐसी चीजें हैं, उन सबको छुपाना है। अच्छा, अब इल्ला माजरा में ना यहाँ पे आके वो लोग जो बहस जो होती है ना चेहरे के पर्दे की, वो यहाँ पे आके आती है। बाज लोग इसको कहते हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, इसमें ले आते हैं चेहरा, क्योंकि वो कहते हैं चेहरा सबसे बड़ी अट्रैक्शन। और वाकई जब आपने किसी लड़की को रिश्ते के लिए भी देखना हो तो उसका चेहरा ही देखते हैं ना, हाथ पैर ना दिखाए तो चाहे, लेकिन चेहरा तो देखते हैं। तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन फेस है। और बाकी जो जब ये इस पे सर्च किया मैंने तो फेस भी था उसके अंदर, तो वो कहते हैं फेस को छुपाना भी जरूरी है। और जो कहते हैं कि नहीं चेहरे का पर्दा नहीं है, क्योंकि इसमें उलमा का थोड़ा सा वो है, तो वो कहते हैं वो इल्ला माजहरा मिन्हा में आ गया, एक्सेप्शन में आ गया, कि वो खुद ब खुद जाहिर हो रहा है, जैसे हाथ जाहिर हो रहा है इस तरह चेहरा जाहिर हो रहा है। तो आपको मैं इसके अंदर ये भी बता दूं कि तमाम आइम्माए कराम इस चीज के कायल हैं कि चेहरे को भी छुपाना चाहिए, पैर महरूम के सामने नहीं खोलना चाहिए। सबका ये इत्तेफाक है सिवाय इमाम अबू हनीफा के, वो कहते हैं कि चेहरा इल्ला माजहरा मिन्हा में आता है, और वो कहते हैं कि ये खुद बखुद एक जाहिर होने वाली चीज है, इसलिए उसको नहीं छुपाया जा सकता। मगर वो भी ये कहते हैं कि जहां पे फितना है वहां पे चेहरा भी छुपाओ। फितना जहां पे आपको लगता है कि ये मर्द कोई अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी बात है, बहुत सारे मर्द इर्द गिर्द हैं, वहां पे आप चेहरा भी छुपाएं, फिर ये उनका कहना है। क्योंकि इब्ने अब्बास की तफसीर के मुताबिक चेहरा और हाथों की हथेलियां ये भी गैर महरमों के सामने खोलना जायज है, वो इब्ने अब्बास ये कहते हैं। जबकि दूसरा मौकफ ये है कि इब्ने मसूद का, वो कहते हैं कि गैर महरम मर्दों के सामने औरत को चेहरा और हाथ खोलना भी जायज नहीं है, उनके सामने भी वो ये नहीं खोल सकती। तो वो इसको जीनत में लेते हैं चेहरे को, और इब्ने अब्बास उसको इल्ला मादहरा मिन्हा में लेते हैं। समझ आ रही है ये बात? तो इतनी सी सिर्फ गुंजाइश मिलती है कि फिर सिर्फ इमाम अबू हनीफा का वो ये मौकफ मिलता है कि आप खोल सकती है, लेकिन वो भी कहते हैं कि फितना, अब फितने देखे कई जगह होती हैं जहां पे बहुत फितना होता है, कई जगह पे इतना नहीं होता। लेकिन अब ये कि फिर अब आप क्या करेंगे, अगर घर में भी कोई आए तो अबाया पहन के खड़ी जाए, नहीं आपको बड़ी चादर रख लीजिए, सादी चादर जो बड़ी चादर रख ले और जीनत ना जाहिर करें, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों के मौकफ हैं और ये इस बहस में, मगर बाकी सब चीजों में जैसे जिलबाब लेने में या सर को कवर करने में, इसमें किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि आप आगे देख लेना, वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, चाहिए कि डाले रखें अपनी ओढ़नियां खिमार, मैंने आपको बताया ना कि सर के दुपट्टे को कहते हैं। अब दुपट्टा अपना वाला ना, अपने जो हमारे मुल्कों में दुपट्टा लिया जाता है उसको ना जहन में लेकर आना, इसलिए कि वो तो बेचारा बिल्कुल ही रस्सी की तरह गले में पड़ा होता है, उसको नहीं आप दुपट्टा कह सकते, ये ओढ़नी है। खिमार मैंने आपको बताया ना, खमर जैसे, खमर आप जानते हैं शराब को कहते हैं, वो अकल को ढांप लेती है, इसी तरह खिमार वो है जो सर को ढांप लेना, सर में ही अकल है ना, तो वो उसको ढांप ले। इट्स ऑब्वियस, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि खिमार जो होता है वो सर का कपड़ा होता है। जैसे मैं अगर कहूँ शलवार, तो आप क्या कहेंगे, टोपी, ये टोपी है शलवार जो है सर पे पहनते हैं आप, नहीं ना, शलवार का आपको पता है कि आपका नीचे के हिस्से का गार्मेंट है। कमीज जब कहती हूँ तो बताने की जरूरत होती है, ये जो ऊपर का होता है वो अपर गार्मेंट, उसको कमीज कहते हैं, या आप उस कमीज को पैरों में पहन लेती हैं, नहीं पहनती ना, इन वर्ड से ही आपको पता चलता है ये कहाँ पहननी है, ठीक है। इसी तरह खेमार जो है ना, एवरीबडी नोज के खेमार का मतलब है वो जो आप सर के ऊपर कवर करने के लिए पहनते हैं। और कैन यू बिलीव दिस कि जाहिलियत में भी लोग, औरतें जो थी वो खेमार लेती थी, ऐसे नहीं था कि वो नंगे सर बाहर निकल जाती थी, आप तो जाहिलियत से भी पीछे चले गए हम। इस्लाम जब आया ना, तो ये औरतें ऊपर सर के ओढ़नियां लेती थी, लेकिन क्या करती थी, उसको पीछे डाल लेती थी, जैसे दुल्हनें आज करती हैं कि बिल्कुल सीना खोल के सामने और जेवर दिखा रहे हैं और पीछे चला गया सारा, वो पीछे को जा रहा है उसका, यानी कमर के ऊपर आपके पल्लू गए हैं, वो इस तरह लेती थी। तो उनको कहा गया कि चाहिए कि डालें अपने खिमार, अपनी ओढ़नियां, सर पे तो है, ये नहीं कि सर से उतार लो, अब सर पे तो है ही वो, उसको अपनी जेब पे डालो, कहेंगे अपने सीने पे डालो, अपने गिरेबानों को उसे कवर करो, जैसे यानी आपने स्कार्फ लिया हुआ तो इतना छोटा स्कार्फ हो कि आपने पीछे डाल लिया, या उसको गर्दन में लपेटते गए, इतना लपेटा होता है कि वो 10-10 लेयर सर पे तो जा रही होती, सीने में कुछ भी नहीं होता, वो पूरा थान ही सर पे लपेट लेते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं, तो उसको सीने के आगे रखो, चाहे आपने जिलबाब भी लिया हुआ, सीने के आगे, इस सीने को कवर करें, कमीज चाहे पहनी भी, तो ये यानी सर के कपड़े को आगे लेकर आए, आपने चादर ली हुई है या वो है, अब चादर एक है उसको भी आगे को उसको करें, पीछे को ना लेकर जाए कि चढ़ा के गर्दन में ले लिया। जब बास हमारी बेचारी बहनें सोचती हैं कि यही जो हम शलवार कमीज ऊपर दुपट्टा ले लेते हैं ना, बस यही काफी है, नहीं है, ये पूरा थोड़ी यहाँ पे हुआ है, सूरह आजाब में है, मैंने आपको बताया था सूरह आजाब पहले उतरी थी, उसके बाद सूरह नूह 5 हिजरी में उतरी या 6 में उतरी, तो 5 हिजरी में खिमार सॉरी जिलबाब का हुक्म आ चुका था। जिलबाब ये बड़ी चादर को कहते हैं, तो ये जो आप शलवार कमीज और दुपट्टा लेकर बाहर चले जाए और सर पे दुपट्टा बस टिका लिया ना, इससे बस हमारा हिजाब पूरा हो गया, या जीन्स और ऊपर शर्ट पहन ली और ऊपर हिजाब ये ले लिया, तो ये आपका पर्दा तो पूरा नहीं हुआ जब तक कि आपके पास जिलबाब नहीं है, आपको इसके ऊपर एक कवरिंग करनी, क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को ना जाहिर करो, तो आपके कपड़े तो सारे के सारे जीनत है, जो भी आपने कपड़ा पहना वो जीनत है आपकी, तो इसको आपने जाहिर नहीं करना, वो तो आपने पहले ही पहना हुआ है। ये खिमार का भी अब बता दिया गया कि ऊपर का जो है इसको भी सीने के आगे ढके, सीने को आगे करें, तो ये खास तौर पे औरत का चूंकि बहुत अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट है, इसलिए इसका खास तौर पे वाजे हुक्म दिया गया, और शैतान इस रास्ते से औरत को अट्रैक्टिव करके दिखाता है आदमी के लिए। तो अब जो लोग ये कहते हैं, जिनको ये नहीं समझ आती कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि बालों को कवर किया जाए, कहाँ लिखा है ये, उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये आयतें क्यों नहीं नजर आती कि ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी कुरान की समझ है तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या करना है आपने, आपका पर्दा कैसा होना चाहिए। आज इनकम्प्लीट पर्दे, या तो वो उन्होंने जिलबाब पहना हुआ है, वो ऐसे भी जद्दा वगैरह में देखा कि औरतें हैं जिन्होंने पूरे अबाए पहने हुए, नीचे काला पहना और सर पे कुछ भी नहीं है, सर बिल्कुल नंगा है, तो कहाँ गया फिर उनका सर का, वो इधर गया वो है ही नहीं। या फिर ये करती हैं कि सर के ऊपर ले लिया और नीचे कुछ भी नहीं, दोनों ही इनकम्प्लीट है। और हमने आज पूरा का पूरा इसको अब बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, जिस वक्त हम सर को बस कवर कर लेते हैं, सर मेरा कवर हो गया, मैंने उसको बस इतना सर टिका लिया अपने सर के ऊपर, ये तो सतर है आपका, इसको कहते हैं हम हिजाब, हिजाब हो गया, ये तो सतर कवर किया आपने, क्योंकि आपका सतर सर से पैर तक है, अभी ऊपर से आपने अपनी जीनत को भी कवर करना है, उसको भी जाहिर नहीं करना, वो यहाँ पे वाला युबदीना जीना तो ना, ये भी तो हुक्म है, तो आप जीनत को भी आप कवर करेंगी, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका जेवर है। और ये देख लें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कोई मौलवी नहीं आपको बता रहे, या कोई टीचर का कहना नहीं है कि आपने इसके ऊपर मतलब पत्नी अपनी तरफ से बना रहे, तो इसको पढ़ लें आप, तर्जुमा भी अब आपको आता है। सूरह नूर में ना शुरू में ही बता दिया गया था कि इसमें वो अहकामात है जो फर्ज है, लिहाजा ये कोई चॉइस वाला मामला है ही नहीं है, मेरा दिल करेगा तो मैं करूंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी करूंगी, बच्चों की शादी हो जाएगी तो करूंगी, फलां की शादी हो जाए, फलां की शादी हो जाए, उसका ये हो जाए, सारी जिंदगी बैठे रहते हैं। मैं तो इसलिए देखा बहुत बूढ़ी बूढ़ी भी कई औरतें होती हैं, वो भी नहीं कर पाती, क्यों? इसलिए कि बस नहीं किया तो आज तक ऐसे ही चल रहा है। तो ये याद रखें, जब आप समेना वाताना करते हैं ना, जब आपने पढ़ लिया और उसे फौरन मान जाते हैं, तो वो ही हुक्म अमल करना आसान होता है, और जिस वक्त आप सोच में पड़ जाते हैं तो शैतान इतनी तावीलें लाता है कि कभी कर ही नहीं पाते। तो ये ना सोचे कि मैं कर लूंगी भी तो ठीक है, नहीं करूंगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए आपके सामने, अगर आपका माशरा सारा का सारा भी बेपर्द हो जाए, कुरान तो वही है ना, कुरान तो अल्लाह का हुक्म है, इसको पढ़ लें, इसमें जो लिखा है यही है जो राइट है, चाहे सारी दुनिया एक तरफ चल पड़े, कुरान अगर दूसरी तरफ चल रहा है तो साफ वही है, दुनिया को मत देख के चले। तो ये ना कहें कि मेरी मर्जी नहीं, हस्बैंड की मर्जी नहीं, फलां की मर्जी नहीं, भाई मैंने अपनी कब्र में खुद जाना है, हस्बैंड ने तो मेरे साथ जाना नहीं, वहां पर वो बचाएंगे, कयामत के दिन भी अल्लाह के सामने मुझे अपना हिसाब खुद ही देना, वो हस्बैंड ने तो खड़े होके देना नहीं, तो फिर और अल्लाह ताला की इताअत के आगे हस्बैंड की फातिमा, अल्लाह ताला की इताअत में ये नहीं कि कोई किसी को राजी करेंगे तो अल्लाह की बात इताअत करनी है, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, उसकी नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना। तो ये ना सोचे मैं रेडी होंगी, अभी मैं रेडी नहीं, आप कब रेडी होंगी, कब? ये हुक्म पढ़ के भी कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान कह रहा है, ये भी तब भी नहीं रेडी होंगी, तो ये ना हो कि इतनी देर हो जाए कि फरिश्ते लेने आ जाए, तो जब जाना होगा ना अल्लाह ताला के सामने, तो फिर तो कफन में भी एक हिजाब होता है, पांच कपड़े होते हैं औरत के कफन के, उसमें भी हिजाब होता है, अल्लाह के सामने तो हिजाब पहन के जाना ही है। तो औरतें इस बात को सोच लें कि क्या ये इतनी बड़ी काफी नसीहत नहीं है कि मुझे मर के तो हिजाब पहनना ही होगा, मैं अभी क्यों ना पहनूं, अपने सर को क्यों ना कवर करूं। अल्लाह अकबर, कई लोग इतनी बड़ी उम्र की भी हो जाती, कहती हैं हमारे लिए दुआ करें कि हम हिजाब कर सकें, कितनी बड़ी बात उनके लिए बन गई, कितना मुश्किल हो गया, इसलिए कि जब भी सुना नहीं अमल किया। अल्लाह हु अकबर। तो अगर यही हमारे लिए मुश्किल होगा तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, जब अबाया पहनने की बारी आए। ये चीज है जहां 90% औरतों का यही प्रॉब्लम है, या तो फिर वो कहीं से तावीले लाते, दिल जो नहीं करता करने का, तो यहां से पकड़ेंगे कोई ना कोई, इंटरनेट से कुछ ढूंढेंगे, अब सर्च करने बैठ जाइएगा कि मैं जरा देखती हूँ फलाने ने क्या फतवा दिया, इससे बड़ा फतवा क्या हो सकता है, इससे बड़ा आपको मैं जो आपको क्लियर बता रही हूँ, मेरी इसमें कोई बात नहीं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि चेहरे वाला कौन कहते हैं और कौन नहीं कहते, ठीक ठीक है। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो चेहरे को जीनत समझते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वाला युबदीना जीनत होना तो कवर करो। दूसरे कहते हैं नहीं, इल्ला माताहरा मिनहा में आता है, ये खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, जैसे हाथ है इसके साथ ही चेहरा भी वो मिला देते, इसलिए उनका। इसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन आप सर्च करें बैठ के, कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो कहेगा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ना करो, उसकी बात बड़ी हो जाएगी और कुरान के पीछे चली जाएगी। वो हमें अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कोई कुछ तो चाहिए होता है, नहीं दिल का पर्दा होता है, आंखों की हया होती है, फलाने की होती है, ये पता नहीं क्या क्या हमने चीजें बना ली। कोई खुदा खौफी, अल्लाह ताला को नहीं पता था, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को नहीं पता था दिल का पर्दा होता है, क्यों ये हुक्म दे दिए यहाँ पे, कि क्यों आयतें आई हैं जिनको पढ़ पढ़ के ढेर लगाते रहते हैं हम हर रमजान में, क्यों ये आयतें आई हैं, किसके लिए आई है? कोई खलाई मखलूक के लिए है, मोमिन औरतों के लिए ही है ना, जो अपने आप को ईमान का दावा करती है हम ईमान वाले हैं, या तो कह दे जो नहीं ईमान वाली वो तो ठीक है उनका मामला है ही नहीं है, वो ईमान ही नहीं लेकर आए, उनको करने दे जो करती हैं, हम तो ना उनके पीछे चले, हम तो अपने आप को कहते हैं मुसलमान ईमान वाले। और अगर बहुत भी मुश्किल भी लग रहा हो, चलो एक स्टेप तो उठाएं, आप जहां पे हैं उससे अगला स्टेप उठाएं, जो सर नहीं कवर करते वो जाप तो शुरू करें, एकदम गश खा के ना गिर पड़ेंगे, हाय अब हमें ये करना पड़ेगा, अब क्या होगा हमारा, फौरन हमारे जहन में जाता है फिर उस शादी में कैसे जाऊंगी, फिर दावत पे कैसे जाऊंगी, फिर हस्बैंड के साथ कैसे जाऊंगी, रेस्टोरेंट में कैसे जाऊंगी, फलानी जगह कैसे जाऊंगी, फिर मेरा क्या बनेगा, ये शैतान है जो आपके जहन में डालता है। सब कुछ हो जाएगा, कोई दुनिया उलट नहीं हो जाएगी, कयामत भी नहीं आएगी, आसमान भी नहीं गिरेगा, बिलीव मी, अगर आज से आप इस चीज का अहद कर लें कुछ भी नहीं होना, सब कुछ अच्छा रहेगा। और याद रखें एक वो एक दूसरी एक्सट्रीम पे ही लोग पहुंच जाते हैं, ओ जी कुछ भी नहीं करना, जैसे इस्लाम ने सारा कुछ बैन कर दिया, जीनत को छुपाने का कहा है, ये नहीं कहा जीनत ही ना करो, ये सुन ले यहाँ पे कहा गया ना जाहिर करो अपनी जीनत, इसका मतलब औरत जीनत करने की उसको इजाजत है, सिर्फ जाहिर करने की इजाजत नहीं है, कौन सी जगह पे जाहिर नहीं करती और कौन सी पे कर सकती है वो आगे आ रही है बात। तो जो दूसरी एक्सट्रीम वाले हैं वो भी तो कुछ समझ करें ना, वो दीन को ऐसा पोटरे करते हैं, जो हिजाब और अबाया लेना शुरू कर दिया, बस नीचे गंदे मंदे कपड़े पहने हुए हैं, ना कोई लिपस्टिक, ना मैं तो मेकअप ही नहीं करती, ना मैं भी ज्वेलरी वगैरह पहनने का भी क्या, अब तो हमने पर्दा शुरू कर दिया, किसने आपको ये कह दिया, आप जीनत करें, अच्छे कपड़े भी पहने, जेवर भी पहने, मेकअप भी करें, अच्छी भी लगे, आप भी अप टू डेट लगे, आप अपने बाल डाई कराए, आप अच्छी जो आपका दिल करता है पहने, मगर नहीं अपनी जीनत जाहिर करनी, कहां गैर महरमों को आगे, किनके आगे जाहिर कर सकते हैं, वो आगे लिस्ट पूरी अल्लाह ताला ने बता दी, मुझे बताए ना आयात की क्या जरूरत थी, अगर सिर्फ नजरों में ही हया थी, आदमी भी सारे हया वाले माशाल्लाह, सहाबा से भी ऊपर ये आदमी चले गए, आज सहाबा के माशरे को तो ये हुक्म दिया गया, आज हम औरतें अल्लाह ताला माफ करे सहाबियात से भी ऊंची शर्मो हया के अंदर है, कि वो तो पर्दा करती नहीं, लेकिन हमें नहीं जरूरत कि जिस वक्त मदीना में ये आयतें उतरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई तो सहाबी अपने घर चले गए और उन्होंने अपनी औरतों को बताया तो सब अपनी चादरें सीना शुरू कर दी। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ऊपर से देखा तो आज घरों में चिराग जल रहे थे, कि पता चला किस बात की ये रोशनी हुई थी, तो इस वक्त सो जाते थे उस जमाने में, कौन से चिराग जला के बैठे रहते थे, पता चला औरतें चादरें सी रही हैं, क्योंकि सुबह फजर पे जाना है ना ये चादरें लेके, सुबहान अल्लाह, इस तरह वो समय ना बताना करते। और हमें देखते हमने अपनी जीनतें सारी बाहर शो करते हैं, हम कहते हैं वरना पहनने का क्या फायदा अगर इसको हमने जाहिर ही ना किया, इसलिए जर बर्जी लिबास दुल्हने बन के अबाए भी ऐसे, जिन्होंने अबाए पहने उन्होंने ऐसे अबाए पहन लेने के, बस वो भी ऐसे हो कि जो इट सेल्फ एक पूरी जीनत है जिसमें पूरी दुल्हन बनी हुई। अब देखें आपको जीनत इख्तियार करने से कोई मना नहीं करता, आप जरूर करें जीनत करें, बल्कि यह आपका हक है और ये औरत की ब्यूटी है, ये औरत को अल्लाह ताला ने ये एक राइट दिया है कि वो जीनत करे, यही चीजें उसके लिए ही बनी है, जेवर आदमियों के लिए थोड़ी है, औरतों के लिए है ये जेवर कि वो पहने जेवर हो। आप ने फरमाया था उसामा को देखा था, उसामा अगर लड़की होता तो हम इसको जेवर पहनाते, उसामा अगर लड़की होता तो हम इसको, इसका मतलब लड़कियों के लिए चीजें हैं, तो कहीं हराम नहीं किया हुआ। आप देख लें हजरत आयशा रजी अल्लाह ने हार पहना हुआ था तो गुम हुआ था ना वो, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप पहने ओढ़े जो मर्जी, आप जो आपको अच्छा लगता है पहने ओढ़े, लेकिन बात यही है कि फिर हम अपनी मजलिसें भी ऐसी रखें, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, एक इस चीज को आसान करें अपनी दूसरी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, कि जिन मजलिसों में आके इतनी सेग्रीगेशन हो कि कोई भी ना हो जहां पे वो अपने अबाए भी उतार सके, अपने हिजाब भी उतार सके और अपने सारी अपनी दिखा सके, अपना जेवर भी, अपना मेकअप भी, अपने कपड़े भी सब दिखा सके। अगर याद रखें, अगर आप इसी हुलिये के अंदर घर से बाहर जाती हैं और उसी हुलिये के अंदर आप पार्टी में आती हैं और उसी हुलिये में आप घर में रहती हैं, देन देर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ उल्टा है। या तो आप उस एक्सट्रीम पे चली गई जिसमें आप हर वक्त ही बुसीदा बनी रहती हैं और अबाया और स्कार्फ कर लिया आपने, का जैसे गोंद ही लगा लिया कि बस चिमट ही गया, अब ये तो कभी उतरना ही नहीं। या तो आप उनमें से हैं, या फिर आप वो हैं जो ना घर में भी जिस हाल में, उसी तरह गैर महरूमों के आगे चली जाती हैं, उसी तरह बाजारों में, उसी तरह जॉब पे, उसी तरह दावतों के अंदर और हर जगह अपनी ब्यूटी डिस्प्ले कर रही हैं। दोनों बुरी हैं, दोनों गलत हैं। एक तो बिल्कुल ही हराम है और एक ने बिल्कुल ही एक्सट्रीम का रास्ता इख्तियार कर लिया कि लोगों को भी डिस्करेज कर दिया कि लोगों देख लो, अगर तुम अबाया स्कार्फ करोगे ना तो मेरी जैसी हो जाओगी बेचारी, सारी अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ेंगी तुम। जकात फिर किस पे है? यही है ना, जेवरात और इस पे तो आप रख सकते हैं, तभी जकात देंगे ना। तो एक्सट्रीम्स पे जाने से परहेज करें, आप ऐसी मजलिसें रखें ताकि सारे लोग इंजॉय कर सके, लोगों के लिए आसानी हो और लोगों को पता चले कि देखो हम इस तरह भी सरवाइव कर सकते हैं, मेरे शौक भी पूरे हो जाएंगे। आप किसी दावत पे जा रही हैं, लेडीज ओनली दावत है, आप पूरा बन संवर के जाएं, ऊपर अबाया पहने, ऊपर स्कार्फ पहने, अपने आप को कवर करें, अपने चेहरे को भी कवर कर लें, आपने उसके ऊपर मेकअप लगाया, आप वहां जाके उतार दें ये सब और खुद भी वैसे इंजॉय कर। लेकिन ये चीजें आज के दौर के अंदर लोगों ने ऐसी कर दी कि क्या मजा आएगा जी, अगर सेग्रीगेशन होगी तो क्या मजा आएगा, मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आदमियों को लज्जत थोड़ी मिलेगी अगर उनको औरतें नहीं नजर आएंगी तो। ये बदनजरी ये ऐसी चीज है जो कि ये भी एक लत है, फिर उनको अच्छा ही नहीं लगता वो मजलिस जहां पे औरतें नहीं है, वो नहीं अच्छी लगती, वो कहते नहीं साथ ही बिठाए, और अगर कहीं अलग बिठा दिया तो बेचारे बेचैन होके भागे आते हैं उधर को कि एक दफा जाके मैं बीवी के अलावा भी औरतों को देखा हूं। फिर फौरन वो मस्जिद के सामने वहां खड़े हो जाते हैं जहां से औरतों ने निकलना है, क्योंकि आज उनको अपनी बीवी और बच्चियों का बहुत इंतजार है। फोन सबने हाथ में पकड़े हुए लेकिन सबकी नजरें दरवाजे के ऊपर हैं, क्योंकि आज बहुत इंतजार है, वैसे चाहे परवाह ना करें। देखिए हमने कैसे अपने कल्चर बना लिए और कैसे हमारा मुआशरा हो चुका है, किन चीजों के पे हम चले गए, बिल्कुल ही उन चीजों से छोड़ दिया जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए। हमें कहा गया अपनी नजरें नीची रखो, वो वहां पे नजरें, आप एक टेक्स्ट कर देंगे मैं गाड़ी में बैठ गया हूं आ जाइए आप, लेकिन ईद के दिन अगर आप देखें, या आप आगे देखें जुमे पे, बस ईद पे तो ज्यादा ही सच संवर के जाती हैं, तो उस दिन ज्यादा नजारा करने का मौका होता है आदमियों के लिए, और औरतें भी पूरी सजत, जीनत तो सारा ही इजहार ही हो रहा होता है जीनत का, ईद पे ना इजहार किया तो और कब होगा, इजहार ही इजहार है। अब मुझे पता है ये इस आयत को आप कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में। हम तो समझते हैं कि जीनत है ही इसलिए कि मैं इसका इजहार करूं, और सो व्हाट, तो ये इस टुकड़े को इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग पर्दे को समझते हैं कि फालतू है और ऐसे ही है मौलवियों की बातें, वो इसकी क्या तफसीर करेंगे, कहाँ से लाएंगे इसकी तफसीर, क्या इसका कि क्या कह रही है ये आयत, इसका ये हिस्सा क्या कह रहा है। तो ये चीजें हमें खुद ऐसे माहौल पैदा करनी है, हमें खुद इन चीजों को रिवाइव करना है, हमें खुद इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी आसानी करनी है, ताकि सब इस चीज के अंदर आप इंजॉय भी कीजिए, आप खुश होइए, आप पार्टी टाइम भी अपना करें, आप हंसे बोले भी जरूर करें, लेकिन ये चीजें कहाँ होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए वो हमें समझने की जरूरत है। लिहाजा इन चीजों को अब जब ऐसे अहकाम आता थे ना तो औरतों को लगता है हमारे फंदा पड़ गया हमारे, क्योंकि उनको अब लगता है कि हम अब हमें सब चीजें हमें अपनी फेंक देनी पड़ेंगी, आज से सब चीज मेरी पाबंदी लग गई, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो इसको प्लीज समझें, जब हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना तो फिर यही हाल हो जाता है, फिर जो अब हम दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ चले गए। तो अल्लाह ताला आपको इजाजत देता है, मगर किस तरह से वो आपको समझना है, है। और जब हम गैर महरम के सामने अपनी जीनत जाहिर करेंगे और यहाँ ऐसी गैदरिंग्स रखेंगे जहां पे गैर महरम भी सामने मर्द भी बैठे हुए हैं, औरतें भी उसी टेबल पे बैठी हुई हैं, यहाँ एक तरफ औरतें और एक तरफ मर्द हैं, लेकिन सारी जगह औरतें भी घूम रही हैं, फिर रही हैं, और पता है ऐसी जिबाइश और ऐसी आराइश करने वाली औरतों के लिए इतनी सख्त वईद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, खुशबू भी नहीं, जो 500 साल के फासले पे आती, जो औरतें लुभाती हैं मर्दों को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्शन बन गए ना आप, जब आप पूरी अपनी जीनत जाहिर कर रहे हैं तो आप अट्रैक्शन बन गए ना, या क्या आदमी देख के आपको आंखें बंद कर लेते। औरत को भी पता होता है, अच्छी तरह पता होता है कि मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही हूं और सब मुझे देख रहे हैं, औरत को अच्छी तरह पता होता है। तो फिर ये हदीस भी याद रख लीजिएगा कि जो मायल करने वाली हैं, मायल होने वाली हैं और मायल करने वाली हैं, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। इनको अट्रैक्ट कर लें जन्नत, चाहे मिले ना मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाए तो क्या मिलेगा इससे, कितना घाटे का सौदा है। हम एक शादी से निकलते हैं या एक ऐसी गैदरिंग से इस किस्म की निकलते हैं, हम कहते हैं बहुत मजा आया, आज तो बड़ा एंजॉय किया, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा गुनाह लेके घर जा रहे हैं, कितना बड़ा गुना। और जिसने होस्ट की ऐसी मजलिस वो सोचे हाँ बड़ी कामयाब रही, लोगों ने बड़ी तारीफ की, बड़ा मजा आया, आपको नहीं पता कि जो 500 लोग आपने बुलाए हुए थे उन 500 लोगों का गुना आपके ऊपर है, क्योंकि आपने ऐसी मजलिस की जिसमें जितनी नजरें भटकी, जितने लोगों के दिलों में कुछ गलत ख्याल आए, या वो सारे कोई फरिश्ते नहीं बैठे हुए, जितने लोगों की नजरें उठी है ना औरतों की मर्दों पर, या मर्दों की औरतों पर, या जो भी वहां पे हो रहा, ऊपर सोने पे सुहागा, म्यूजिक भी वैसा होता है जिसमें शायरी भी ऐसी कि बस फिदाई होने वाली, तो वो सारा गुना इस होस्ट के ऊपर है। तो आज माशाल्लाह ये पैसे भी दे आया, उसने पैसा भी खर्च किया और साथ गुना भी कमा लिया, नुकसान ही नुकसान, खर्चा करके गुना कमाया। ये हमारे फंक्शंस हैं जिनमें हमें बड़े मजे आते, तो ये दिस इज फैक्ट, इसको आप क्या कहेंगे, और इसको सिर्फ ये है कि हम इग्नोर करते हैं इन चीजों को, इनसे आंखें बंद किए रखते हैं कि हमें नजर ना आए, हमारे मजे खराब ना हो, लेकिन दिस इज फैक्ट, क्या नहीं गुनाह होगा उसको, उसने क्यों ऐसी मजलिस रखी, या उसको पता है कि आने वाले कहाँ कहाँ किसके घर में क्या प्रॉब्लम हुए। मेरे पास रोज ईमेल्स आती हैं, मुझे पता है कि लोगों के घरों में क्या प्रॉब्लम्स आजकल चलती हैं, क्या क्या आदमी औरतों को कहते हैं इन्हीं हमारी बेपर्दगियों की वजह से, और क्या क्या अफेयर चल रही हैं, किन औरतों के शादीशुदा औरतों के शादीशुदा आदमियों के साथ, वो कहाँ से, वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स कौन सी होती हैं, कहाँ से ये चीजें जन्म लेती हैं, यही मजलिस है। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया अपने सीनों के ऊपर तो और भी ज्यादा ये कि ओढ़नियां डाल। अब माशाल्लाह वो औरतें थी वो तो सुन के ही फौरन उन्होंने मान लिया, और अब देखना ये है कि हम कितना सुन के मानते हैं, हम कितना अल्लाह की रजा को ऊपर रखते हैं और सर झुका देते हैं, और अगर इस्लाम कबूल करने के बाद भी हमें, और मोमिना होने के बाद भी हमें अपनी मर्जियां करनी है और सरकशी को नहीं छोड़ना, तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा इस ईमान का, और क्या कि जब हमने हमने जिंदगी तो अपनी मर्जी से गुजारनी है भाई, अल्लाह ताला का हुक्म जो भी होता रहे, तो फिर किस चीज का ईमान है हमारा। अब वो पता है एक रिवर्ट थी, उसने कहा, कोई गोरी थी, अब उसने बचपन से बेचारी ने उसने कहा हिजाब और पर्दे किए हैं, लेकिन अब वो कर रही थी, तो किसी ने पूछा कि आपके ऊपर क्यों ये थोप दिया गया मुसलमान औरत के ऊपर कि वो पर्दा करे, हिजाब करे, इस करे, तो उसने कहा कि बात ये नहीं है कि हिजाब की, या इस बात की नहीं है कि आंखों में हया, या इस बात की नहीं है कि जरूरत है कि नहीं है, या क्या है, इन बातों की नहीं है, उसने कहा बात सिर्फ इतनी है कि कौन है जो अल्लाह के हुक्मों के आगे सर झुका देता है, और कौन है जो खुद को अकले कुल समझता है और ताबीलें पेश करता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं, और ये नहीं मैं करूंगी। देखिए ना, ये तो इस्लाम कबूल करना ही ये चीज है ना, कि इंसान झुक जाए, अपनी अपनी अकल को झुका दे और कहे मुझे समझ आए ना आए, हालांकि हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आती है, ये नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें समझ आती है, लेकिन फिर भी हम बड़े मासूम से बन जाते हैं, बेअकल से बन जाते हैं, तो कौन है जो अपनी अकल को झुका देता है, और कौन है जो फिर भी इतना बन के रहता है कि नहीं जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह के हुक्मों की मैं खुद ही काफी हूँ। वला युबदी न जीना तो हम ना, मैं और ना जाहिर करो अपनी जीनत को सिवाय इन रिश्तों की, ये 8 रिश्ते भी बता दिए गए यहाँ पे मर्द जो है। तो अल्लाह लिबूलाती हिन्ना, अपने शोहरों के लिए, मैंने आपको कहा ना आप सवाल करते हैं हम जीन्स पहन सकते हैं कि नहीं, हम स्कर्ट पहन सकते हैं, अपने शोहरों को पहन पहन के दिखाएं। आप छोटे ब्लाउज की साड़ियां आपको शौक है अगर पहनने का, वो हस्बैंड के लिए सारी जीनत उसके लिए, आप कुछ भी पहने उसके लिए, आप सिल्क पहने, आप जैसी मर्जी नाइटीज पहने, आप जैसी मर्जी तैयार हो हस्बैंड के लिए, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड हो अपने शोहरों के लिए। औ आबाई हिन्ना, या अपने बापों के लिए, बाप के सामने भी आप अपनी जीनत जाहिर कर सकते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा शोहर के लिए तो सारी की सारी है, मगर फिर भी एक बाप है या भाई है, एक हया उनके सामने भी होती है। होते पहले वक्तों के अंदर बाप आते थे तो सर पे दुपट्टा ले लेते थे, हालांकि ये नहीं कि उनसे वो पर्दा है, लेकिन बस एक अदब, एक हया शर्म ना उनकी, वो भी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चियां भी हैं तो उन्होंने इतनी टाइट कपड़े पहने में, टाइट्स पहन के वो बाप के आगे भी फिर रही है, इसमें भी एक हया का आंसर होना चाहिए। उसी तरह बाहर चले जाते हैं, उसी तरह घर में, मैंने आपको जैसे बताया ना कि अगर आप उस जिस तरह घर में उसी तरह बाहर जा रहे हैं ना, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसी तरह बाहर है उसी तरह पार्टी में, उसी तरह घर में समथिंग रॉन्ग। ना अपने शोरों के बाबू यानी सुसर वगैरह, और अच्छा बाप के अंदर नाना दादा वगैरह चचा मामू भी आ गए, और शोहर के बाप में सुसर है वो भी अब्दी महरम है, कभी उस शोहर से तलाक भी हो जाए तब भी ये अब्दी महरम है, कभी भी इसे निकाल नहीं हो सकता। और अबनाई ना या अपने बेटों के, या अपनी बेटों के शोहरों के बेटों के, यानी शोहर का पिछली बीवी से कोई बेटा है या दूसरी बीवी से कोई बेटा है, तो वो भी इस औरत के लिए शोहर का बेटा महरम होता है। वह इखवानी हिन्ना, अपने बेटे तो महरम है ही हैं, शोहर के बेटे भी महरम, और अपने भाई, और भाइयों के अंदर मुंह बोले भाई यानी जो इंसान ने खुद बनाए हुए हैं कि भाई ये हमारे भाई हैं, या इनको भी मैं भाई भाई कहती हूँ, ये हमारे कजन है लेकिन बस बचपन से हमने इनको भाई का, वो सारे शामिल नहीं है। ओके, ये या तो सके भाई या माँ की तरफ से भाई, अखियाफी और अल्लाती जिनको, या रजाई भाई, वो सारे आ जाते हैं जिनको हम सुतेले बहन भाई कहते हैं, हाफ ब्रदर जिसको कहते हैं, वो आ गए। औ बनी इखवानी हिन्ना, या बेटे भाइयों के, यानी जैसे भतीजे, या बनी अखवाती हिन्ना यानी भांजे, औ निसाई हिन्ना या अपनी औरतें, अपनी औरतों के सामने भी आप अपनी जीनत खोल सकती हैं। अपनी औरतें मतलब क्या है, जिन औरतों को आपको पता है कि ये शरीफ औरतें, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। बाज ने कहा नहीं सिर्फ मुसलमान औरतें, हालांकि उम्मातुल मोमिनीन या सहाबियात के पास भी उनका मिलना जुलना आना जाना उनका होता था जो गैर मुस्लिम औरतें होती थी, तो ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम के सामने तो आपने पर्दा करना है और मुसलमान के सामने आपने पर्दा, क्योंकि बाज मुसलमान औरतें भी ऐसी हैं कि जो गलत कामों में होती हैं, जो गलत रास्ते के ऊपर होती हैं। इसी वजह से देखें हमें ये समझ करनी चाहिए हमें कि हमारी अपनी औरतें कौन सी हैं। बाज़ औरतों को इतनी अकल नहीं होती कि वो जब कोई अपने औरतों की गैदरिंग के अंदर अपने स्कार्फ या वो उतार के बैठा हो तो चुप करके वो कैमरों से तस्वीरें ले लेती हैं, ये तो हमारी औरतें ना हुई ना फिर, जिनको इतनी समझ नहीं, जिनको इतनी शर्म नहीं कि ये औरतें पर्दा करती हैं बाहर में, इनकी क्यों छुपके। हाँ आप किसी इजाजत से लें, बेशक आपकी इजाजत किसी ने दे दी है वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप छुप छुप के तस्वीरें ले लेते हैं, छुप छुप के आपने कैमरे लगाए हुए हैं जो लोगों की वीडियो बना रहे हैं, ये कौन सी, ये तो कोई मोमिना औरत नहीं हो सकती। इसी तरह औरतों को मना किया गया कि वो अपने मर्दों के सामने, चाहे अपने शोहर हैं बेटे हैं, उनके सामने किसी गैर औरत की ऐसी उसकी हुलिया बयान ना करें कि उस बंदे के जहन में वो औरत आ जाए कि वो कैसी होगी, जैसे कहेंगे आए वो तो इतनी खूबसूरत, वो तो ऐसी, उसके तो यहाँ पे तिल और उसका तो रंग गोरा और उसके तो ये, इस तरह की बातें अपने शौहर या बेटों या भाइयों के सामने, अपने घर के मर्दों के सामने मत करें कि उनके जहन में वो औरत आ जाए। तो इसका मतलब औरतों को इतनी अकल और समझ होनी चाहिए कि वो किस हद तक यानी पर्दे के अहकामात हैं, कि उनको समझ हो कि मैंने ये बातें नहीं अपने घर में करनी है। ठीक है, औ मा मलकत अईमानुहुन्ना, या जो उनके मालिक हुए उनके दाहिने हाथ यानी गुलाम लौंडियां, वो तो उस वक्त ऐसे ही होते थे जैसे आपकी अपनी कोई माल मताओ, आज तो है नहीं। अवित्ताबिआईना गैर उलिल इरबा, या फिर वो जो पैरवी करते हैं जो जिनके अंदर कोई गर्ज नहीं होती, जैसे घर के नौकर यानी पैरवी करने वाले यानी इतबा करने वाले नौकर चाकर आपके हाथ के अंडर होते हैं, वो आपके जेरे दस्त हैं, आप उन उनके अंदर कोई शहवत नहीं है, जैसे कोई हीजड़े होते हैं बाज दफा वो भी नौकर होते हैं, या ऐसे बिल्कुल जिनकी कोई बूढ़े बिल्कुल हो चुके हैं, अब उनकी कोई गर्ज ही नहीं है, उनको औरतों से कोई सरोकार ही नहीं है, वो उनका इस तरफ को ध्यान ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं लोग मीना रिजाल मर्दों में से। अब तिफल या बच्चे, वो वाले बच्चे अल्लादीन लम यदहर वाला औरात निसा, जो अभी औरतों की छुपी बातों से वाकिफ नहीं, यानी वो भी बालिग भी नहीं हुए, उनको इतनी समझ ही नहीं है औरतों की बातों की। वाला यद्रिबना भी अर्जुले, ये सारे यानी बता दिए, इनके सामने आप अपनी जीनत जाहिर कर सकती, इसका मतलब अगर आपने सारों के सामने ही जीनत जाहिर करनी थी तो फिर ये बताने की क्या जरूरत थी, कुरान का ये हिस्सा नाउजुबिल्ला क्या फालतू है, ये गिनवाने की जरूरत क्या थी, सब के आगे आपने एक जैसा ही आ जाना, उसी तरह मेकअप करके उसी तरह जेवर पहन के, जेवर भी दिखा रही हो, यहाँ पे तो कहा कि बला युबदी ना जीना था उन्ना, अपनी ना जाहिर करे जीना, मगर सिर्फ इनके सामने आप जाहिर कर सकती। तो हम रोज तोड़ते हैं कुरान का हुक्म, रोज जब हम घर से बाहर स्टेप करते हैं या हमारे घर में कोई आते हैं गैर महरम, तो हम हमेशा तोड़ते हैं, तो सोचें आज तक कितनी दफा ये हुक्म टूटे होंगे। वला यद्रिबना भी अर्जुलिहिन्न अली युआलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और हत्ता के अपने पैर भी जमीन पे ऐसे ना मारे कि उनकी छुपी हुई जीनत जाहिर हो जाए। एक जीनत छुपी हुई भी होती है, वो कैसी है, जैसे पाजेब पहनी हुई है पैरों में, वो नजर तो नहीं आ रही लेकिन वो छन छन करेगी जिस वक्त पैर मारेगी, या फिर हील्स पहनी हुई, अब कहने को वो जीनत नहीं है लेकिन वो भी टक टक करती जा रही है, और वो टक टक करती आई है तो वो सारे मर्द पहले देखेंगे कौन आई है, तो जो आपकी ऐसी हील्स हैं वो भी अलाउड नहीं है। इसी तरह चूड़ियां हैं, ये भी छुपी हुई जीनत है, इसी तरह खुशबू है, ऐसे ना पैर मारें कि खुशबू जाहिर हो, ऐसे ना चलें, कैट वॉक है, ऐसे ठुमक ठुमक के चलना है कि आपकी ये जीनत खास तौर पे जाहिर कर रही है कि मेरी तरफ देखो, अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर एंड में क्या कहा गया, वा तूबू इलल्लाही जमीअन, तौबा करो सब के सब, तूबू जो है ना जमा प्लूरल है, सब के सब तौबा करो, क्यों, इसलिए कि इंसान है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे ये हुक्म तोड़ा गया, क्योंकि इस हुक्म के बाद आ रहा है तूबू, इस आयत के अंदर है, देखिए आप ये अलग से ऐसे नहीं कि किसी भी गुनाहों के ऊपर, वो तो हम सोचते हैं ये गुनाह है, अगर इंसान इस तरह से करता है इसके ऊपर तौबा की जरूरत है, अगर इंसान इसको तोड़ता है तो जो जिंदगी में हो चुका अगर आज समझ आ गई है तो इंसान अब तौबा कर ले, जमीन सब के सब तौबा करो, और जो कोई पर्दा करते भी हैं वो भी तौबा करें कि पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे कुछ ऐसी बातें हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई। अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो अगर ईमान वाले हो ना तो सब तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, इसका मतलब अगर तौबा नहीं की इन चीजों से तो कामयाबी नहीं है, यही मतलब हुआ ना। और तौबा क्या है, पलट आना, तौबा ये नहीं कि आज मैं तस्बीह पकड़ लूं क्लास के बाद और तौबा एक कर लूं, तौबा की तस्बीह पढ़ लूं और फिर उसी तरह बाहर जा रही, नहीं, तूबू इलल्लाही जमीअन, तुम सब के सब तौबा करो ए मोमिनो, क्योंकि शैतान भुलवा भी देता है, शैतान ना आहिस्ता आहिस्ता, अब आप आज कुछ सोचेंगे कल को कहेगा नहीं नहीं ये तो इतना ज्यादा स्कार्फ लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा पीछे कर लो, नहीं नहीं इतने भाई की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा यही ले लो आगे, थोड़ा सा बस अपने ढाल लिया, कोई बात नहीं, उसके बाद वो भी सिरकना शुरू हो जाएगा। इन आयात को बार बार इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि शैतान इन चीजों को भुला देता है, तो तौबा करो सब, कि जहां पे गलती हो गई, गफलत हो गई, कहीं कमी रह गई, अल्लाह ताला इसके ऊपर माफ कर दे, यानी आप उसको छोड़ दो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, वरना वो कोई तौबा नहीं है कि जिसमें इंसान तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतनी दफा तौबा कर ली और बस हो गया, नहीं, ठीक है, इसको इन गुनाहों को छोड़ना है। और देखिए कितना लंबा औरतों के लिए जो आयत है वो कितनी लंबी है, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी और मेरी प्रोटेक्शन चाहता है, ये हमारे अपने भले के लिए, ये किसी और की नहीं, नहीं हम सबसे पहले हमारी अपनी भलाई है इसके अंदर, हमारी अपनी लिए खैर है इसके अंदर। नजरों की हिफाजत से लेकर जीनत की इजहार तक पता चल गया हमें कहाँ पे क्या करना। खुद ही माशरा पाक हो जाएगा जब इन दो आयतों पे ही अमल हो जाए। तो तौबा कर लो सबके सब, यानी अब मर्द भी औरतें भी सभी तौबा करें अगर कामयाबी चाहिए तो। अब ये तो यहां से पता चल गया ना कि हम जो ये कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा फर्ज है, पहले तो इनको फर्ज का बताएं। क्या कुरान में हर हर जगह हर हुक्म पे है फर्ज है? नहीं है ना। तो कुरान तो सारा का सारा ही इसलिए आया कि हम इस पे अमल करें, या क्या हर हर जगह कहने की जरूरत है कि ये फर्ज है, जब सूरत शुरू ही हो गई और फर्ज कह दिया, और क्या हमें चाहिए? तो लिहाजा अगर फला पानी है, कामयाब होना है, फेलियर से बचना है, तो इनको इम्प्लीमेंट करना होगा हमें। कम अज कम हम जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, आज से तौबा करें, ताकि हम फलाह पा जाएं, वरना फलाह इसके बगैर नहीं हासिल हो सकती। तो ये छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बस दुपट्टे की बुकल मार के निकल गए बाहर और मेकअप सारा किया हुआ और चूड़ियां और जेवर और सब पहना हुआ और सोचा बस हाँ मैं, हमारे पर्दे हो गए। तो सही पर्दे के अहकाम को समझे कि क्या है जो अल्लाह ताला ने रिक्वायर किया है, वो ही पर्दा है। मेरी और आपकी डेफिनेशन नहीं इसमें चलेगी, वो अनकेल आयामा। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जो कमा रहे हैं अब वो क्या करें, वो किसके पास जाएं, मैंने आपको कहा था ना, उसके बाद आयत आ रही है। तो वो ही है कि एक और चीज जिससे ये बेहयाई के दरवाजे बंद हो सकते हैं वो ये है कि कमारों का निकाह कर। कमानों से मतलब ये है कि जो सिंगल है उनका भी, जो कोई डाइवोर्स्ड है उसका भी, जो रंडवा है या बेवा है उसका भी। तो इन सब के जो भी बगैर स्पाउस के हैं, औरत है या आदमी, उसका निकाह कर दिया जाए। मिनकुम तुम में से वो सालिही ना मैंने इबादिकुम व इमाइकुम, और वो जो साले हैं जो नेक हैं तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में। उस जमाने में गुलाम और लौंडी आका के अंडर ही होते थे, तो या तो आका अपनी लौंडी के साथ ताल्लुक रखता था, अगर नहीं वो रखता, सारे तो नहीं रखते थे, तो अगर नहीं रखता तो फिर उसका कहीं निकाह कर दो, ताकि वो ऐसे ही इधर उधर कुछ गलत काम ना करे। फुकारा युग्निहुमुल्लाहु मिन फद्लिही, अगर वो फकीर है मोहताज है, अल्लाह उनको गनी कर देगा। यानी देखिए इतनी बड़ी बशारत है कि वो इंसान फौरन डरता है ना कि आए क्या होगा, शादी कर ली तो फिर उसका खर्चा कैसे उठाएंगे, किस तरह होगा, कैसे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तीन लोगों की मदद अपने जिम्मे ले लिया, तीन लोगों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, वो मुकातिब जो अपना किताबत करना चाहता है गुलाम या लौंडी, वो उसकी आगे बात आ रही है वो मैं आपको समझाऊंगा, और वो शख्स जो पाक दामन रहने की नीयत से निकाह करे। एक बंदा है ना वो सोचता है कि मेरी नजरें कैसे कंट्रोल में हो सकती हैं, या मैं क्या करूं, मेरे अंदर शहवत भी है, जाहिर है एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के अंदर जरूरत है ये चीज भी। अब वो अगर उसकी जरूरत पूरी करने की उसके अंदर इस्तेआत है तब भी वो नहीं करता, तो फिर वो कोई हराम में पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उनके निकाह कर दो। ये किनको कहा जा रहा है? माँ बाप को कहा जा रहा है, या जो भी वली है उसको कहा जा रहा है जिसके माँ बाप ना। आप ससुर ने फरमाया जिस बंदे ने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, अब बाकी के ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता है। ठीक है, ये भी एक जरूरत है, और इसको अगर हलाल तरीके से नहीं पूरा किया गया तो जरूर कोई हराम रास्ता इंसान निकाल लेता है फिर, जिससे ये जरूरत पूरी करता है। क्योंकि अगर वो जवान भी है, उसके अंदर ताकत भी है, वो कोई हिजड़ा नहीं है, वो उसके अंदर ताकत भी है, उसके पास वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, माने इतना है कि वो अफोर्ड कर सकता है, तब भी वो नहीं करता, तो फिर वो शैतान का भाई है। ऐसे एक सहाबी के बारे में आप सरसर ने फरमाया था कि जो क्या तुम्हारे पास बीवी है, उन्होंने फरमाया नहीं, लौंडी है तो फरमाया नहीं, फरमाया कि फिर तुम्हारे पास इस्तात है, फरमाते हाँ, फिर फरमाया फिर तो शैतान के भाई, क्योंकि फिर इंसान क्या करेगा, शैतान उसको फिर उल्टे रास्ते पे ही लेकर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो पूरी कराएगा उसके ये जरूरत, और जितने रास्ते हैं फिर वो गलत ही हैं। हाँ ये अलग बात है कि एक बंदे का हो ही नहीं रहा निकाह, उसका भी आगे बात आएगी, वो नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करे। अल्लाह वासिउन अलीम, तो इस बात से ना डरो कि हमारे पास नहीं है पैसे तो क्या होगा, अल्लाह अल्लाह गनी कर देगा। जो सिर्फ पाक दामन रहने की नीयत से निकाह करता है, क्योंकि उसको डर है कि मैं कहीं गलत में ना पड़ जाऊं। आपको पता है जिसको ये डर हो कि अगर मैं ने निकाह नहीं किया और मैं किसी गलत काम में पड़ जाऊंगा, तो उसके ऊपर उलमा कहते हैं कि वाजिब है कि वो निकाह करे, उसके ऊपर फर्ज है, ठीक है, वली अस्ताफे, और चाहिए कि पाक दामन रहे। अल्लादीन ला यजिदूना निकाह, जो नहीं पाते निकाह, यानी कोई उनका ऐसा है मसलन है मेहर देने के लिए नहीं है, या जैसे बाज दफा कहीं अप्रोप्रिएट रिश्ते ही नहीं मिल रहे, उसके अंदर ही डिले होता जा रहा है। बहुत बच्चियां बेचारियां इतनी करती हैं, अल्लाह ताला सारी बच्चियों के बच्चों के जो भी शादी के काबिल हैं, अल्लाह ताला उनके लिए नेक रिश्ते मुहैया फरमाए, और जहाँ पे उनकी जिंदगियां सुख के साथ गुजरे, खुशियों के साथ गुजरे। इतनी परेशानी में ईमेल्स आती हैं कि लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, और पसंद भी करते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो क्या, तो खूब से खूब तरक्की तलाश में आगे से आगे लड़के वाले फिरते रहते हैं। और लड़कियों का यह है कि वो बेचारियां जाहिर है वो क्या करेंगी, अब जब नहीं निकाह हो रहा तो क्या करें। तो उसमें भी ये नहीं है कि वो हराम में पड़ जाए, बल्कि चाहिए कि पाक दामन रहे वो भी, जो कि निकाह की नहीं मौका पा रहे, उनको उनकी शादी किसी भी वजह से नहीं अभी हो पा रही, चाहे अभी पढ़ रहे हैं, अब मसलन 13-14 साल का बच्चा बालिग हो गया, अब उसकी तो नहीं अब शादी करने चल पड़ेंगे, मतलब 16 साल का, अब उसकी नहीं शादी करेंगे, अब इतनी अकल ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, वो रख ही नहीं सकता, तो फिर अब क्या करें, क्या जिना की तरफ चला जाए, नहीं, फिर भी उसको पाक दामन रहे, हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, हत्ता कि अल्लाह गनी कर दे कुछ, अगर रिस्क के कुछ प्रॉब्लम है तो अल्लाह कुशादगी कर दे, या और कोई और ऐसी बात है तो अल्लाह ताला उनको गनी कर देगा अपने फजल से। तो उस तक वेट करने का जो पीरियड होगा उसमें भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसीलिए आपसे सलम ने फरमाया कि निकाह करो, नौजवानों को फरमाया, और जो नहीं कर सकते वो रोजे रखें, ताकि रोजों से भी ना इंसान की फिर कुव्वत इतनी रहती नहीं कि वो गलत कामों की तरफ जाए। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ये उनको फ्रीडम नहीं दे दी कि अब आपके पास निकाह नहीं हो रहा तो अब बिचारी अब क्या करें, अब इधर जा रही हूं उधर किसी के साथ गलत काम कर रही है, किसी को फंसाने के चक्कर में, या उसके साथ शुरू कर दिया उधर कर दिया, ये नहीं, पाक दामन रहो तब भी अल्लाह ताला गनी करेगा अपने फजल से। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह ताला गनी कर देगा अपने फजल से, कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब बना देगा, लेकिन तुमने ये एक्सक्यूज नहीं लेके चल पड़ना, मैं क्या करूं, मेरे या फिर क्या कसूर है। वल्लदीन यबतगून अलकिताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, और वो जो जो चाहते हैं मुकातबत, अब वो उस जमाने के अंदर गुलाम या लौंडिया होते थे, और मुकातबत ऐसी होती थी कि वो कहते थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे अपने मालिकों के साथ कि इतने पैसों पे आप मुझे फ्री कर देंगे अगर मैं इतने अरसे में पैसे आपको दे दूं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। मैंने अपनी कीमत दे दी, मतलब उसने 30,000 का ये गुलाम खरीदा तो कहे कि मैं 50,000 आपको 6 महीने बाद दे दूंगा, और उसके में जो है ना वो आपको कोई मुझे उस वक्त आजाद करना होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो चाहती है ना मुकातबत, आप उनके साथ मुकातबत कर लेंगे, मालिक ये ना कहे नहीं नहीं हमने नहीं तुम्हें आजाद करना, पकातिबूहुम, तो उनसे मुकातबत कर लो, इन अलिमतु फीहिम खैरन, अगर तुम उनके अंदर खैर जानते हो कि ये अच्छे हैं भलाई वाले हैं, तो उनको आप उनके साथ मुकातबत करके उनको फ्रीडम दो। देखिए इस्लाम ने ना एक दिन में आके ये हुक्म नहीं सबको दे दिया कि सब अपने गुलामों लौड़ियों को फ्री कर दो, अगर ऐसा होता तो माशरे में बहुत एक बदमनी फैल सकती थी, जरायम हो सकते थे। अब हर एक के अंडर उनके गुलाम लौंडियां होते थे, तो वो उनकी तहवील में होते थे, वो उनके अंडर होते थे, वो कोई फ्री नहीं होते थे कि जो मर्जी करते फिर। और ये कौन होते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, ऐसे नहीं किसी को पकड़ के भी कहीं से भी गुलाम लौंडियां बना लिया। आज के यहाँ पे बस सोचते हैं कि पता नहीं कहीं गए और वहां पे छापा मार दिया, वहां से कोई औरतों को पकड़ लिया और उनको लौंडियां बना लिया, ऐसा नहीं। ये जो लड़ने के लिए आते थे उनके जो मर्द और औरतें होते थे उनको ना गुलाम इस तरह से बना दिया जाता था कि स्टेट उनको असाइन करती थी कि फलां का ये गुलाम है, फलां की ये लौंडी है, खुद से वो जाके जबरदस्ती किसी को नहीं ले लेते थे। तो अगर तुम्हें उनके अंदर खैर नजर आती है तो फिर तुम उनके साथ मुकातबत कर लो, यानी उनकी फ्रीडम के लिए एक रास्ता बना दिया इस्लाम ने ताकि ज्यादा से ज्यादा गुलाम फ्री हो। वह आतुहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और दो उनको माल से, अल्लाह के माल से, अल्लज़ी जो उसने तुमको दिया है, अल्लाह ताला ने जो तुमको माल दिया है उसमें से उनको आजाद करने के लिए तुम उनकी हेल्प करो, यानी आप भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी जकात में से हेल्प कर सकते हैं, या लोग सदका व खैरात से हेल्प कर सकते हैं। वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगा, और बाज लोग उस सोसाइटी में ऐसे थे जो अपनी लौंडियों को मजबूर करते थे कि वो ये बदफेली करें, जिना करें, क्योंकि उससे वो पैसे लेते थे, यानी एक धंधा कराते थे उनसे। तो उनको कहा गया कि तुम ना मजबूर करो अपनी लौंडियों को अलल बिगा बदकारी पर, इन अरदना तहसुनन, अगर वो इरादा करती हैं कि वो पाक दामन रहे। वो बेचारियां कहती थी हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन उनके मालिकान उनसे कराते थे, क्योंकि ये भी उनका एक इनकम का जरिया था। तो वो परहेजगार रहना चाहती, ये मतलब नहीं कि जो नहीं परहेजगार रहना चाहती उनसे करा लो, बल्कि ये कहा गया तुम ना मजबूर करो अपनी बांदियों को। इसका मतलब है ही ये कि वो नहीं करना चाहती, वो पाक दामन ही रहना चाहती हैं, तो उनको मजबूर ना किया जाए। जो खुद ही करना चाहती हैं वो तो अलग एक कैटेगरी है। तब तो वो आराधल हयात दुनिया, ताकि तुम्हें दुनिया की जिंदगी का सामान मिले कि तुम इनसे इनकम हासिल करो। व मई युकरे हुन्ना इन्नल्लाह मिन बादी इकराही ना गफूर रहीम, और जो कराहत करती हैं इसको, जिनको बेचारियों को मजबूर किया जाता है, तो अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला फिर गफूर रहीम है उनकी मजबूरी की वजह से। जिससे पता हमें चलता है कि जिससे अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जबरदस्ती गन पॉइंट पे कोई काम कराया जाए, कोई गुनाह कराया जाए, या कोई ऐसी इतना उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो बेबस हो चुका है, तो अल्लाह ताला को पता है कि वो मजबूर है और वो नहीं करना चाहता, तो उस पे गुनाह नहीं होगा बल्कि गुनाह कराने वाले पे होगा। वलकद अनजलना इलैकुम आयात मुबयिनात, और अलबत्ता तहकीक नाजिल की हमने तुम्हारी तरफ खुली आयत, वाजे आयात, वाजे अहकामात, व मसलन मिन अल्लदीन खलौ मिन कब्लिकुम, और मिसालें उन लोगों की जो गुजर चुके तुमसे पहले, व मौइज़तन लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए वाज, यानी तुमसे पहले लोगों की अल्लाह ताला ने, देखें बरात की भी मिसालें अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम की, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, इनकी बरात की भी मिसालें बता दी हैं इसमें। इस तरह पिछली कौमों की भी, उनके भी हालात और वाज नसीहतें मुत्तकी लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले, और अहकामात जो है वो सारे खुले खुले हैं। सूरह नूर के ये अहकामात इतने वाजे हैं, इनमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है ऐसी कि किसी को समझना। तो ये अल्लाह ताला के ही तरफ से है, अनजलना, हमने नाजिल किए हैं तुम्हारी तरफ ये अहकामात, हमने नाजिल किए हैं ये मिसालें तुम्हारी इबरत के लिए, तुम्हारे जानने के लिए, ताकि तुम नसीहत पकड़ो इनसे। अल्लाह ताला हमें इन आयात से नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए, और इनको हमारे अमल में ले आए, और अल्लाह ताला इनके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान भी फरमा दे, और इनको याद रखना हमारे लिए आसान फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ